بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتاؤں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج کے کارکرم میں آپ سورہ اسراء کی ساتویں، آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے قاری سعید توسی سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، یدی تم کوئی بھلائی کرو گے تو وہ اپنے لیے ہی کرو گے، اور یدی کوئی برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرو گے۔ تو جب دوسرا وچن پورا ہونے کو آئے گا تو ایک شکتیشالی گٹ آئے گا جس کے لوگ تمہارے چہروں کو برا بنا دیں گے और मस्जिद अल-अक्सा में प्रविष्ट हो जाएंगे, जिस प्रकार से कि वे पहली बार प्रविष्ट हुए थे, और वे जिस वस्तु को भी अपने नियंत्रण में लेंगे उसे बड़ी कठोरता से तबाह कर देंगे। शायद तुम्हारा पालनहार तुम पर दया करे, और यदि तुम पलट आए तो हम भी पलट आएंगे, और हमने नरक को काफिरों के लिए एक कड़ा कारावास बनाया है। निश्चित रूप से ये कुरान सबसे सुदृढ़ राह की ओर मार्गदर्शन करता है, और भले कर्म करने वाले ईमान वालों को ये शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, आज बुधवार है, मेहर माह की 7, सफर की 22 और सितंबर की 29 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत कार्यक्रम अनमोल बातें प्रस्तुत किया जाएगा। अनमोल बातें के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, उसके उपरांत हम आपको कार्यक्रम सुनाएंगे शौर्य गाथा, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। वरिष्ठ नेता ने श्री पैमान जिबिल्ली को IRIB का प्रमुख नियुक्त किया। अरबैन मिलियन मार्च में 1,60,00,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीकी कमांडरों ने अफगानिस्तान में अपनी गलतियों की बात स्वीकार की। ब्रिटेन में ईंधन संकट गहराता ही जा रहा है। और अब आप विस्तार से अख्तर अब्बास से समाचार सुनिए। IRIB में अली असगरी की कार्यावधि समाप्त होने पर पैमान ने जिबिल्ली को इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई के आदेशानुसार अब से पैमान जिबिल्ली IRIB के प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। वरिष्ठ नेता के बयान में आया है कि जन जागरूकता तथा ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मीडिया एक विश्वविद्यालय के समान है। ये संस्था शत्रुओं के षड्यंत्रों का मुकाबला करने के लिए एक मंच के रूप में है, साथ ही ये देश के सार्वजनिक वातावरण में आशा और प्रसन्नता फैलाने वाला है। वरिष्ठ नेता के बयान में आया है कि हमारी प्राथमिकताओं में सांस्कृतिक मार्गदर्शन, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी भावना को मजबूत करना, इस्लामी ईरानी जीवन शैली का प्रचार एवं प्रसार तथा राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना शामिल है, जिनको मानव पूंजी का प्रयोग करते हुए कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है। इसके लिए दिन रात अथक प्रयासों की आवश्यकता है। अपने संदेश में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने अपने कार्यकाल के दौरान अली असगरी की ओर से किए जाने वाले प्रयासों की सराहना करते हुए पैमान जिबिल्ली के लिए ईश्वर से सफलता की कामना की। इस्लामी गणतंत्र ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अफगानिस्तान के साथ मिलने वाली सीमाओं पर सहायता गतिविधियां शुरू करने का ऐलान किया है। इसने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख करीम हिम्मती का कहना था कि हमारी संस्था अफगान नागरिकों के लिए संयुक्त सीमाओं पर सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नए अफगान पलायनकर्ताओं के आने के तुरंत बाद रेड क्रिसेंट सोसाइटी और संबंधित ईरानी संस्थाओं ने अपनी तत्परता का ऐलान कर दिया था। ईरान के रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख ने बड़ी संख्या में कैंप और अन्य सहायता सामग्री, जिनमें खाने पीने की वस्तुएं और दवाएं भी शामिल हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचा दी गई हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु हथियारों का भंडार करने, उसे विकसित करने, प्रयोग करने और फैलाने का एक बार फिर कड़ा विरोध किया है। परमाणु हथियारों की संपूर्ण तबाही के अंतर्राष्ट्रीय दिन के अवसर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में सदस्य देशों के प्रमुखों, विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी से एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में ईरान के राजदूत रजा नजफी ने कुछ देशों की ओर से परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए वार्ता को रद्द किए जाने को इस समझौते के छठे अनुच्छेद का उल्लंघन करार दिया और कहा कि परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय वार्ता को गतिरोध का शिकार बनाने का जिम्मेदार अमरीका है। उन्होंने कहा कि हम अमरीका और सारी परमाणु शक्तियों से मांग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करें और शीघ्र ही समझौते को व्यवहारिक बनाएं। ईरान का कहना है कि सीरिया के विरुद्ध इसराइल की कार्रवाइयों को रुकवाने के लिए सुरक्षा परिषद को तत्काल कदम उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद से मांग की है कि वो इसराइल को इस बात के लिए विवश करे कि सीरिया के विरुद्ध की जा रही अपनी गतिविधियों को फौरन रोक ले। मजीद तख्त रवांची ने सीरिया के परिवर्तनों के संबंध में कहा कि अवैध ज़ायनी शासन सीरिया की संप्रभुता को उल्लंघन कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसराइल की कार्रवाइयां क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं। इराक के पवित्र स्थलों के नियंत्रण विभाग की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इस बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अरबईन या चेहलू में 1,60,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इराक के पवित्र स्थलों के नियंत्रण विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस साल अरबईन में भाग लेने वालों में विदेशी श्रद्धालु भी शामिल थे, किंतु कोरोना के कारण उनकी संख्या पूर्व की तुलना में बहुत कम थी। इराक की सरकार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जायरों की सुरक्षा के लिए 9,500 जवानों को तैनात किया गया था। 9,500 जवानों के साथ ही 266 पुलिस वाहनों को भी गश्त के लिए लगाया गया था। इस बीच इराक के स्वयंसेवी वाला अशद शाबी ने ऐलान किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलों का कार्यक्रम बिना किसी गड़बड़ी के अंजाम पाया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलू मनाने वाले श्रद्धालुओं पर सुरक्षा बलों ने हमला कर दिया, जिसके परिणाम में हताहत होने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। इरना की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया की पुलिस ने राजधानी अबुजा में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के श्रद्धालुओं पर हमला किया, जिसमें दर्जनों श्रद्धालुओं के घायल होने की भी सूचना है। रिपोर्ट में बताया गया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम या अरबईन के अवसर पर राजधानी अबुजा की एक सड़क पर अरबईन मार्च निकाला जा रहा था, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने हमला कर दिया। नाइजीरिया के इस्लामी आंदोलन के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद का कहना है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से अरबईन मार्च करने वाले श्रद्धालुओं पर अकारण फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 8 श्रद्धालु शहीद हो गए। इससे पहले 1 श्रद्धालु और उसके बाद 3 श्रद्धालुओं के शहीद होने की खबरें सामने आई थीं। नाइजीरिया की पुलिस ने इसी तरह अरबईन मार्च में शामिल हजारों श्रद्धालुओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। भारत चीन से लगी अपनी सीमा पर बख्तरबंद सैन्य टुकड़ियों को मजबूत कर रहा है। इरना की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने इस मकसद के लिए HVF कंपनी से 118 अर्जुन MK-1A टैंक खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये ऐसी हालत में है कि चीन से लगे संयुक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में इन टैंकों के इस्तेमाल के बारे में शंका व्यक्त की जा रही है। अर्जुन MK-1A टैंक वर्तमान अर्जुन टैंक का ही अपडेट वर्जन है और आशा है कि इनकी फायरिंग और विध्वंसक शक्ति ज्यादा होगी। सैन्य मामलों के विशेषज्ञ एक भारतीय टीकाकार कहना है कि नए टैंक की विशेषता फायरिंग का सूक्ष्म कंट्रोल सिस्टम और ज्यादा राउंड है। भारत में पिछले 2 दिनों से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कमी हो रही है। भारत में कोरोना वायरस या COVID-19 संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच लगातार 2 दिनों से नए मामलों की संख्या कम होती जा रही है। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार अब ये संख्या 20,000 से भी कम है। ब्रिटेन में ईंधन की कमी के बाद पेट्रोल स्टेशनों पर लगी लंबी लंबी लाइनों के बीच सशस्त्र हिंसा और मारपीट की घटनाओं में भी वृद्धि हो गई है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल की कमी के संकट का रूप धारण कर जाने और उससे जुड़ी दूसरी घटनाओं में वृद्धि के दृष्टिगत ब्रिटिश सरकार ने सेना को चौकस कर दिया है। ईंधन के संकट की वजह से ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में पेट्रोल के मूल्य सितंबर 2016 के बाद पहली बार बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। ईंधन की कमी की वजह से पूरे ब्रिटेन में स्कूल वैन सेवा भी बंद कर दी गई है। ब्रिटेन में ईंधन की कमी की वजह से पेट्रोल स्टेशनों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। ब्रिटिश सरकार अभी तक स्थिति पर नियंत्रण पाने में बुरी तरह विफल साबित हुई और उसे सेना से मदद लेनी पड़ रही है। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के युद्ध मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमरीकी सेना के चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मेली ने कहा है कि अफगानिस्तान से निकलने की वजह से अमरीका की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। सीनेट कमेटी के सामने तर्क देते हुए युद्ध मंत्री और अमरीकी सेना के चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ स्टाफ और सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों के निकलने और निष्कासन के तरीके का बचाव किया। अमरीका के युद्ध मंत्री ने यह बात स्वीकार करते हुए कि अमरीकी सरकार ने पूर्ण रूप से सक्रिय संस्थाओं के साथ राष्ट्र को धोखा देने की कोशिशों में बहुत समय लगाया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक ने कहा है कि ऑकस के नाम से प्रसिद्ध अमरीका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले परमाणु समझौते की समीक्षा करना बहुत ही जटिल और कठिन काम है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने दावा किया है कि यद्यपि यह समझौता बहुत जटिल अवश्य है, लेकिन उनके कथन अनुसार मैनेज किया जा सकता है। इसराइल की वायुसेना के कमांडर गिलाद बिरान ने फिलिस्तीनी प्रतिरोध के मिजाइल हमलों के मुकाबले में अपने मिजाइल डिफेंस सिस्टम के कमजोर होने की बात स्वीकार की है। इसराइली वायुसेना के कमांडर गिलाद बिरान ने कहा है कि इसराइल के वर्तमान मिजाइल डिफेंस सिस्टम में कुछ कमजोर पहलू मौजूद हैं और वह सारे खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तरी कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण का ऐलान किया है। उत्तरी कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने बुधवार की सुबह प्योंगयांग द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण की बात कही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने रक्षा और रडार सिस्टम की कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा है कि उसके सुखोई 27 युद्ध विमानों ने अमरीका के एक जासूस जेट विमान का पीछा किया और उसको भागने पर मजबूर कर दिया। तास न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सीमाओं को अतिक्रमण से बचाने और एक हवाई लक्ष्य की पहचान के लिए एक सुखोई 27 युद्ध विमान को मिशन पर भेजा गया था। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। अनमोल बातें। श्रोताओं, कार्यक्रम अनमोल बातें में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनई ईमान और तकवा को विभूतियों व नेमतों के नाजिल होने का कारण मानते हैं। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता पवित्र कुरान के सूरह अहकाफ की 13वीं आयत की तिलावत करते हैं, जिसमें महान ईश्वर कह रहा है कि अगर गांव वाले ईमान लाते और तकवा अर्थात ईश्वर से डरते और सदाचारिता अख्तियार करते तो हम जमीन और आसमान की बरकतें उन्हें प्रदान करते। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि आसमानी बरकतें वही आध्यात्मिक विभूतियाँ व अनुकंपाएँ हैं, वही ईश्वरीय कृपा व दया है, वही ईश्वरीय सामीप्य है, वही फरिश्तों का ईश्वरीय बंदों के लिए इस्तिग़फ़ार व प्रार्थना है। ज़मीन की बरकतें यानी समस्त वे चीज़ें जो इंसान के जीवन से संबंध रखती हैं, जैसे आज़ादी, कल्याण, स्वतंत्रता व स्वाधीनता, सुरक्षा, आजीविका का अधिक होना और शारीरिक स्वास्थ्य जैसी दूसरी चीज़ें। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर तकवा और ईमान है तो इंसान के लिए ये बरकतें हैं और वे बरकतें व अनुकंपाएं भी हैं। ये इस्लाम है, तो जब हमने कहा कि इस्लामी क्रांति तो उसका यही अर्थ है जो हमने कहा। दोस्तों, कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको ये बताएंगे कि इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई प्रतिरोध को फरिश्तों के नाजिल होने और इंसान की सफलता व मुक्ति का कारण समझते हैं। वरिष्ठ नेता पवित्र कुरान के अहकाफ की 13वीं आयत की तिलावत करते हैं, जिसका अनुवाद है, जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा पालनहार है, उसके बाद वे उसी पर बने रहे तो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और वे कहते हैं कि न डरो और न ही दुखी हो। पवित्र कुरान की इस आयत से ये बात स्पष्ट है कि जिन लोगों ने ये कहा कि ईश्वर हमारा पालनहार है, यानी महान ईश्वर के अलावा वे किसी को भी अपना पालनहार नहीं मानते हैं, और वो इसके बाद वे अपनी इस बात पर बाकी रहते हैं, यानी वे हमेशा महान ईश्वर को ही अपना पालनहार समझते हैं और वो उस पर जमे रहते हैं। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि सत्य के रास्ते में प्रतिरोध करने और उस पर डटे रहने का परिणाम यह है कि महान ईश्वर इंसान और समाज से दुख व डर को समाप्त कर देता है और कामयाबी व सफलता उन्हें प्रदान करता है। हमने जिस रास्ते का चयन किया है वो ईश्वरीय रास्ता है। ईश्वरीय रास्ते का मतलब केवल उपासना करना नहीं है। ईश्वरीय रास्ता यानी मानवीय समाज को कल्याण तक पहुँचाना। हमारे राष्ट्र ने इस रास्ते का चयन किया है, यानी न्याय का रास्ता, ईश्वर की उपासना का रास्ता, इंसानों की समानता का रास्ता, इंसानों के बंधुत्व का रास्ता, सुशील व अच्छे व्यवहार का रास्ता, मानवीय सर्वगुणों का रास्ता। यह वो रास्ता है जिसका चयन हमारे राष्ट्र ने किया है। इस रास्ते में उसने आग्रह भी किया और इस रास्ते में जो कठिनाइयां हैं उसने उनका मुकाबला भी किया और वो उनसे डरा भी नहीं। इंशाअल्लाह महान ईश्वर इस प्रतिरोध का अच्छा व मीठा फल भी उसे प्रदान करेगा। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओ, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा में। राजनैतिक चर्चा में हम बात करेंगे अफगानिस्तान में अमेरिका की जबरदस्त शिकस्त की। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा में ब्रिटेन का ईंधन संकट भी शामिल रहेगा।
We've been to 9 so far।
भारत के पंजाब राज्य में कांग्रेस के भीतर संकट पैदा होकर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये विषय भी राजनैतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो चर्चा के विषय यही है, आरंभ करते हैं अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त से। अमेरिका के युद्ध मंत्री और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्वीकार किया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई है। जायजा पेश कर रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के चले जाने के लगभग एक महीने बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अफगान युद्ध में अमेरिकी अक्षमता को स्वीकार किया है। अमेरिकी सेना के चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने भी कहा है कि अफगानिस्तान से निकलने की वजह से अमेरिकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। साथ ही सीनेट कमेटी के सामने तर्क देते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री और अमेरिकी सेना के चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली और सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निकलने और निष्कासन के तरीकों का बचाव किया। अमेरिकी सेना के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा कि वाशिंगटन के अफगानिस्तान से निकलने के फैसले और उसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में अमेरिका की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। जबकि दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि तालिबान और अफगान सरकार के बीच अमेरिका की भूमिका से अफगान सैनिकों का हौसला पस्त हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना था कि ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट था जिसे 17 दिनों में किया गया। क्या ये बेहतर था? निश्चित रूप से नहीं। हमने बहुत जल्दबाजी में लोगों को काबुल से निकाला। उन्होंने कहा कि हमने एक सरकार बनाने में मदद की, लेकिन हम राष्ट्र को धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि अफगान सेना और हमारे प्रशिक्षित भागीदार एक ओर हो गए। बहुत सी जगह तो एक गोली तक नहीं चलाई गई जिसने हमें आश्चर्य में डाल दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने पर वाशिंगटन की साख के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि वाशिंगटन आज कहां खड़ा है। इसके लिए डैमेज एक मात्र शब्द है जिसे इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बहरहाल जानकार हलकों का मानना है कि अफगानिस्तान में विदेशी विशेषकर अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति बहुत सी समस्याओं का कारण थी, और अब अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के पूर्ण रूप से चले जाने के बाद बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जबकि कुछ अन्य का मानना है कि अफगानिस्तान से विदेशी व अमेरिकी सैनिकों के चले जाने से अफगानिस्तान में नए युग का आरम्भ हो चुका है।
ब्रिटेन में ईंधन का संकट लगातार जारी है। कोविड के हालात में ये संकट और भी असहनीय हो गया है। लंदन से IRIB संवाददाता मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कायम रिजवी।
ब्रिटेन में तेल संकट के दुष्प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं। तेल की कमी और उसकी बढ़ती कीमतों ने ब्रिटेन में यातायात को अभूतपूर्व ढंग से महंगा कर दिया है, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे अधिक हो गया है। इस देश के वाहन मालिकों के लिए ईंधन की तलाश अब सबसे महत्वपूर्ण काम बन कर रह गया है।
We've been to 9 so far.
अब तक मैं 9 पेट्रोल पंपों पर जा चुका हूं और ये 10वां है जहां पर मैं लाइन में खड़ा हुआ हूं। लाइन लंबी है और हो सकता है कि यहां भी मुझको तेल ना मिलने पाए। भीड़ ने परिस्थितियों को और ज्यादा खराब कर दिया है। सरकार भी इसमें विफल रही है। मैं 4 पेट्रोल पंपों पर जा चुकी हूं, लेकिन वहां पर पेट्रोल नहीं है। मैं कहां से पेट्रोल लाऊं? मेरी कार का पेट्रोल टैंक खाली है। ब्रिटेन की सरकार ने पेट्रोल की कमी का मुख्य जिम्मेदार ट्रक चालकों की कमी को बताया है और उसने अप्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय संघ से सहायता की मांग की है। लेकिन इस संघ के सदस्यों ने, जिनको इस संघ से ब्रिटेन के निकलने के सरकारी समारोह की याद ताज़ा है, उन्होंने मदद करने के बजाय ब्रिटेन का मजाक उड़ाया है। हम उस समस्या के समाधान के लिए ब्रिटेन नहीं जाएंगे जिस समस्या को स्वयं ब्रिटेन वासियों ने पैदा किया है। पेट्रोल संकट ने ब्रिटेन के लोगों में यातायात के सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग की भावना को बढ़ा दिया है, जिसके कारण बस स्टैंडों पर भीड़ बहुत अधिक बढ़ चुकी है। इन परिस्थितियों में ब्रिटेनवासी कोरोना गाइडलाइंस के महत्व को समझने के बावजूद सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 महीने के दौरान ब्रिटेन में 10 लाख से अधिक कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस प्रकार से ब्रिटेन विश्व में कोरोना मरीजों की दृष्टि से अब 4th स्थान पर पहुँच चुका है।
In COVID wards like this,
ब्रिटेन में उत्पन्न पेट्रोल संकट के दुष्परिणाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन के पेट्रोल पंपों के संघ ने ऐलान किया है कि इस देश के 5,500 पेट्रोल पंपों में से 2/3 के पास पेट्रोल समाप्त हो चुका है और बाकी में भी पेट्रोल समाप्त होने जा रहा है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये ऐसी चेतावनी है जिस पर यदि ध्यान न दिया गया तो इसके बहुत ही गंभीर आर्थिक परिणाम सामने आएंगे। लंदन से IRIB के लिए मुस्तफा कासिमजादे की रिपोर्ट।
भारत के पंजाब राज्य की कांग्रेस इकाई में संकट उत्पन्न हो गया जो लगातार जारी है। कि संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सिद्धू के इस्तीफे से परिस्थितियां एक बार फिर खराब होती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली से शमशाद काजमी की रिपोर्ट।
भारत के पंजाब राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की कठिनाइयां मुख्यमंत्री बदले जाने के बावजूद बढ़ती ही जा रही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के त्याग पत्र और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस के आंतरिक मतभेद समाप्त हो जाएंगे, लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस एक बार फिर उस समय संकट में घिर गई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चले आ रहे मतभेद कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन रहे थे। पार्टी हाईकमान के आदेश पर अमरिंदर सिंह ने त्यागपत्र दिया और नवजोत सिंह सिद्धू के निकट समझे जाने वाले दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन बताया जाता है कि पार्टी के कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर सिद्धू ने विरोध व्यक्त करते हुए ये कदम उठाया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। सिद्धू ने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि वह पंजाब के भविष्य और इस राज्य के विकास और कल्याण के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वे पार्टी की सेवा करते रहेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सिद्धू के इस्तीफे को कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है जो सरकार विरोधी लहर से उबरने का प्रयास कर रही है। सूत्रों के अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल में कुछ लोगों को मंत्री बनाए जाने पर सिद्धू नाराज थे और उनका कहना था कि इस प्रक्रिया में उनकी उपेक्षा की गई और उनसे कोई सलाह नहीं ली गई। सिद्धू के त्याग पत्र पर मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि उनसे बातचीत हो रही है और उनकी सरकार पार्टी की विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ रही है। उन्होंने पार्टी को सुप्रीम बताया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जहां सिद्धू को अस्थिर इरादों वाला बताया, वहीं श्रोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू को मिसगाइडेड मिसाइल बताया जिसे पता ही नहीं कि किधर जाना है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस बिखर रही है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसके साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का अंतिम कार्यक्रम आज कल। शौर्य गाथा।
दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में 1988 के आरंभ में जंग के संतुलन को बदलने के बारे में चर्चा करेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम शौर्य गाथा में 80 के दशक में ईरान पर इराक के बासी सद्दाम शासन के हमले के मुकाबले में ईरानी राष्ट्र की पवित्र प्रतिरक्षा और इस दौरान ईरानी राष्ट्र के वीर सपूतों के शौर्य के बारे में बता रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि ईरान के दक्षिणी इलाकों में ऐसे ऑपरेशन की संभावना खत्म हो गई थी जिसके दुश्मन को भनक न लगने पाए। इसी तरह इराक की सरहद से मिले ईरान के पश्चिमोत्तरी इलाकों पर सैन्य ऑपरेशन के केंद्रित होने के बारे में बताया। इराक के सुलेमानिया इलाके में वलफज्र 10 सैन्य ऑपरेशन इन्हीं ऑपरेशनों में से एक था।
वलफज्र 10 सैन्य ऑपरेशन सैन्य नजर से एक सफल ऑपरेशन था जिसके दौरान हलबचा शहर और उसके आसपास के इलाके ईरानी फोर्सेस के नियंत्रण में आ गए थे। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य सुलेमानिया प्रांत के पीछे के रास्ते और सुलेमानिया प्रांत के लिए रसद को रोकना था, लेकिन कुछ तत्वों की वजह से इस्लामी जियाले सुलेमानिया शहर पर नियंत्रण सहित बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर सके।
सद्दाम की सेना ने अपनी शैली के विपरीत ईरानी वीरों पर शेलिंग नहीं की बल्कि स्थानीय फोर्सेस और पहली डिवीजन की 3 ब्रिगेड पर आधारित फोर्सेस के साथ ईरानी फोर्सेस पर केमिकल हमले कर दिए। इराक की बासी सेना ने वलफज्र 10 सैन्य ऑपरेशन के स्थान पर मुख्य फोर्सेस को न भेजने का फैसला किया। इसी तरह इराकी फोर्सेस ने वलफज्र 10 सैन्य ऑपरेशन की प्रतिक्रिया में ईरानी फोर्सेस और कुर्द बहुल इलाके तथा हलबशा शहर पर केमिकल बमबारी की। 70,000 की आबादी वाला हलबशा शहर सुलेमानिया प्रांत में दरबंदी जान बांध के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये शहर जलवायु की नज़र से इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र का सबसे अच्छा इलाका है।
वलफज्र 10 सैन्य ऑपरेशन में ईरान की कामयाबी के बाद इराक की बासी सेना ने सद्दाम के सीधे आदेश पर 16 मार्च 1988 को हलबशा शहर पर आम लोगों पर बड़े पैमाने पर केमिकल हमला किया। ये केमिकल बमबारी सरदश पर केमिकल हमले के करीब 7 महीने बाद हुई थी। इस दिन फ्रांस के 50 बमबार विमान मिराज और सुपर इंटेंडार्ड ने जिनमें से हर एक पर 500 किलो के 4 केमिकल बम लदे थे हलबशा और उसके आसपास के गांवों पर गिराए। इन बमों में मस्टर्ड गैस, नर्व एजेंट और साइनाइड गैस भरी हुई थी। इराकी बमबार विमानों ने उस वक्त बमबारी शुरू की जब बड़ी तादाद में दुजेला की जनता, जिसमें मर्द औरत, बूढ़े, जवान और बच्चे सभी थे, हलबशा जा रही थी। हलबशा शहर और उसके आसपास के गांवों का थोड़ी ही देर में मंजर बदल गया। शहर और गांव में घर, गलियां और सड़कें शवों से भर गए। ये शव विभिन्न हालात में अकड़े हुए मूर्ति की तरह नजर आ रहे थे।
हलबशा पर केमिकल बमबारी सद्दाम शासन का सबसे बड़ा युद्ध अपराध था। 2 घंटे में हलबशा और उसके आसपास के गांवों के करीब 5,000 लोग जहरीली गैस की सांस लेने से मौत के मुंह में चले गए, जबकि 7,000 लोग घायल हो गए। हलबशा में केमिकल हथियारों से हमला पहले विश्व युद्ध से अब तक केमिकल हथियारों का सबसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। जो त्रासदी हलबशा में घटी उसकी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुई परमाणु बमबारी से तुलना की जानी चाहिए। केमिकल बमबारी के बाद हलबशा शहर की बची हुई जनता ने ईरान में शरण ली और ईरान ने केमिकल हमले के पीड़ितों का इलाज किया और कुछ को इलाज के लिए यूरोप भेजा।
तत्कालीन अमरीकी विदेश मंत्री जॉर्ज शूटल्स ने सद्दाम शासन द्वारा केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के बारे में कहा था, हम केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ थे और इराक पर ईरान की जीत नहीं चाहते थे, इसी वजह से आधिकारिक तौर पर इराक की भर्त्सना नहीं की। सद्दाम शासन द्वारा ईरानी शहरों और आर्थिक मूल रचनाओं पर बमबारी व मिसाइल हमले और केमिकल हथियारों का इस्तेमाल और जंग के खर्च की आपूर्ति के लिए ईरान के खिलाफ आर्थिक पाबंदियों की वजह से जंग का संतुलन इराक के हित में मुड़ गया।
सद्दाम शासन ने ताकीद की थी कि जमीनी मोर्चों पर बासी सेना के ठिकानों की रक्षा और ईरानी फोर्सेस के जमीनी हमलों के मुकाबले में बड़े पैमाने पर जवाबी हमले हों। वलफज्र 10 ऑपरेशन पर इराक की बासी सेना की अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिक्रिया से यह लगा कि इराकी सेना दक्षिणी इलाकों को जंग का मुख्य मोर्चा मानती है और उसका यह भी मानना था कि पश्चिमी मोर्चे पर ईरान के सैन्य ऑपरेशन का लक्ष्य दक्षिणी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई का रास्ता खोलना था। इसी वजह से वलफज्र 10 सैन्य ऑपरेशन के आगाज में इराकी सेना ने अपनी फोर्सेस को बांटा नहीं बल्कि उसे दक्षिणी मोर्चे पर तैनात किए रखा। ईरानी फोर्सेस की इकाइयों की पश्चिम में सैन्य ऑपरेशन अंजाम देने के लिए तैनाती के बावजूद इराक की बासी सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर अतिरिक्त सैन्य इकाई नहीं भेजी बल्कि वहां पहले से मौजूद इकाइयों से केमिकल हथियार से ईरानी फोर्सेस का मुकाबला किया।
सद्दाम समझ चुका था कि ईरान जमीनी हमला जारी रखेगा ताकि इराकी सेना के कब्जे से अहम इलाके निकाल कर अपने नियंत्रण में ले ले। ईरानी फोर्सेस को इस रणनीति को अपनाने से रोकने के लिए इराक की बासी सेना ने अपनी लड़ाई क्षमता बढ़ाने की कोशिश की और नई योजना के जरिए फाओ, खैबर द्वीप समूह, शलमचे और हलबचे इलाके को ईरानी फोर्सेस के नियंत्रण से निकालना और मोर्चों पर पहल को अपने हाथ में लेना चाहा।
मार्च महीने के अंत और अप्रैल महीने में बदलते हुए हालात की वजह से थोपी गई जंग पर एक्शन और रिएक्शन के छाए हुए स्वरूप में बदलाव आया। इराक की बासी सेना ने आक्रामक मुद्रा अपनाया और ईरानी शहरों व मूल रचनाओं पर क्रूरता के साथ बमबारी व मिसाइल हमले जारी रखे।
इराक की बासी सेना ने 29 फरवरी 1988 से 21 अप्रैल 1988 के बीच कुछ दिनों को छोड़ लगातार 51 दिन ईरानी शहरों पर हमले किए। इस दौरान इराकी शासन ने तेहरान पर 100 मिसाइल और ईरान के केंद्रीय शहरों पर करीब 100 मिसाइल से हमले कर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही सद्दाम शासन ने जंग के मोर्चे का रुख बदलने के लिए बड़े पैमाने पर केमिकल हथियारों से हमले की नीति अपनाई। जंग के आखिरी साल में सद्दाम शासन ने ईरानी नागरिकों के खिलाफ केमिकल हमले बढ़ा दिए। इराकी बासी सेना ने जंग के दौरान ईरान में नागरिक लक्ष्यों पर 30 बार से ज्यादा केमिकल हमले किए।
जंग के दौरान 110,000 ईरानी केमिकल हमलों का निशाना बने। सद्दाम शासन के पास कच्चे केमिकल माल के 48% हिस्से को 1980 में हॉलैंड के व्यापारी फ्रांस वॉन अनरात ने मुहैया कराया था। सद्दाम शासन के पतन के बाद हॉलैंड की डेन हॉग अदालत ने इस व्यापारी को सद्दाम शासन को केमिकल पदार्थ बेचने के जुर्म में 17 साल जेल की सजा सुनाई। इस व्यापारी की ओर से बेचे गए केमिकल पदार्थ को सद्दाम शासन ने हलबचे पर बमबारी में इस्तेमाल किया था।
जंग के आखिरी दिनों खासतौर पर 1988 के जाड़े के मौसम में इराकी बासी सेना ने ईरानी वीरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइनाइड गैस का इस्तेमाल किया। यूएन के आंकड़े के अनुसार इराक के बासी शासन ने जंग के दौरान कुल 1,800 टन मस्टर्ड गैस, 600 टन सरिन गैस और 140 टन नर्व एजेंट ताबून गैस, करीब 1,00,000 बम, रॉकेट और गोलों में इस्तेमाल किए। सद्दाम ऐसी हालत में बड़े पैमाने पर केमिकल हथियार इस्तेमाल कर रहा था कि मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले इराकी तानाशाह के अपनी ही देश की जनता के खिलाफ खुले अपराध पर खामोश रहे और उसे केमिकल हथियार बनाने के लिए जरूरी पदार्थ मुहैया कराते रहे। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों कार्यक्रम आजकल लेकर उपस्थित हैं जिसमें शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की सदस्यता के बारे में चर्चा करेंगे। कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। शंघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्यों ने शुक्रवार 17 सितंबर को इस संगठन में इस्लामी गणतंत्र ईरान की स्थायी सदस्यता पर सहमति जताई। इस्लामी गणतंत्र ईरान इस संगठन की बैठकों में पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल होता था, लेकिन अब ईरान की स्थायी सदस्यता के बाद संगठन का आकार और महत्व अधिक बढ़ गया है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना सन 2001 में सुरक्षा आयामों के मद्देनज़र की गई थी। बाद में इसमें आर्थिक आयाम भी जुड़ गए। ये दुनिया के उन बड़े और प्रभावी संगठनों में से एक है जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 2 सदस्य अर्थात चीन और रूस शामिल हैं। इस संगठन में दुनिया की 4 परमाणु शक्तियां शामिल हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के इंटरनेशनल रिलेशन कॉलेज के विशेषज्ञ और शिक्षक अबुल फजल ओलमाई कहते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जो पेश किया जा सकता है वो इस संगठन के भौगोलिक दायरे का विस्तार और स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की सम्मिलिति के बाद इस संगठन का दायरा काफी बड़ा हो गया है। ईरान एक क्षेत्रीय ताकत है जो खतरों और चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। वो शंघाई सहयोग संगठन के लिए मजबूत हिफाजती दीवार का रोल अदा कर सकता है। शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की सदस्यता से ये क्षमता पैदा होती है कि संगठन के सारे देशों के साथ ईरान के पारस्परिक रिश्ते बढ़ेंगे। ईरान की आर्थिक क्षमताएं संगठन के लिए महत्वपूर्ण अवसर हैं। संगठन की 21वीं बैठक में द्विपक्षीय रूप में दस्तावेजों के हस्ताक्षर से इस तथ्य का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस अवसर का फायदा उठाते हुए ताजिकिस्तान ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ संबंधों का नया अध्याय शुरू कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के इंटरनेशनल रिलेशन कॉलेज के विशेषज्ञ अबुल फजल ओलमाई कहते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की स्थायी सदस्यता से एशिया में पूरब और पश्चिम के बीच आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया संपूर्ण हो गई। भविष्य में हम देखेंगे कि इन दोनों केंद्रों के बीच व्यापक रूप से आर्थिक लेन देन हो रहा है। तेहरान विश्वविद्यालय के एकेडमिक बोर्ड के सदस्य और चाइना स्टडीज ग्रुप के प्रमुख हामिद वफाई का मानना है कि चीन, रूस और भारत शंघाई सहयोग संगठन के बड़े शक्ति केंद्र हैं। चीन इस संगठन की सबसे बड़ी ताकत है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय हैसियत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ईरान की स्थायी सदस्यता का एक नतीजा ये भी होगा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की क्षेत्रीय स्थिति अधिक मजबूत होती जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन बहुत बड़ा, सफल और भरोसेमंद क्षेत्रीय संगठन है। इस पोजीशन का सही रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सारे क्षेत्रों, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में व्यापक क्षमताएं मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ईरान आर्थिक क्षेत्र के अलावा रूस और चीन की मदद से शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक के क्षेत्र में, इसी तरह सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मामले में अपने लक्ष्य साध सकता है। इन हालात में जब पश्चिम की ओर से ईरान पर प्रतिबंध लगे हुए हैं और पश्चिम के वर्चस्ववादी सिस्टम का ईरान अपनी क्षमताओं से डटकर मुकाबला कर रहा है, तो इन हालात में शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की सदस्यता पश्चिम के मुकाबले में ईरान की बड़ी रणनीतिक सफलता है। तेहरान विश्वविद्यालय के एकेडमिक बोर्ड के सदस्य और चाइना स्टडीज ग्रुप के प्रमुख हामिद वफाई कहते हैं कि चीन और रूस की नीति बहुपक्षीयता पर केंद्रित है। ईरान की भी रणनीति यही है कि एकपक्षी नीतियों का विरोध करते हुए बहुपक्षी व्यवस्था का समर्थन किया जाए। दृष्टिकोण की ये समानता और शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की सदस्यता, जिसमें चीन और रूस जैसे देश मौजूद हैं, इस्लामी गणतंत्र ईरान के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। चीन शंघाई सहयोग संगठन का प्रमुख संस्थापक सदस्य है। चीन ने अपने आसपास के देशों के साथ सहयोग की नीति अपनाई, जिसका नतीजा ये रहा कि एशिया में तनाव का दायरा नहीं फैल सका। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना उसी साल हुई जिस साल अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। सन 2001 की इन दोनों घटनाओं में कोई संपर्क है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे पूरब की ओर दुनिया का रुझान बढ़ा, जबकि इस्लामी गणतंत्र ईरान के नेतृत्व में प्रतिरोध मोर्चा भी अस्तित्व में आ गया। धीरे धीरे विश्व स्तर पर शंघाई सहयोग संगठन का बहुपक्षीय रुझान बढ़ता गया और इसके सदस्य देशों ने अधिक समन्वित रूप से संयुक्त फैसले किए। इसी बीच खाद्य सुरक्षा और आर्थिक हित देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गए, यानी यह स्थिति हो गई कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। भारत और जर्मनी में ईरान के राजदूत रह चुके अली रजा शेख अत्तार मानते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन एक सुरक्षा संगठन है। यही वजह है कि अमरीका ने इस संगठन के एक सदस्य विशेष रूप से चीन, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी की हैं। इन देशों की एक समान विशेषता यही है कि सबने दबाव डालकर मुकाबला किया। वैसे शंघाई सहयोग संगठन खाद्य, वित्तीय, ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देता है, लेकिन संगठन के सामूहिक हितों के बीच संतुलन और संगठन के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा भी इस संगठन के सराहनीय कामों में शामिल है। अब इस्लामी गणतंत्र ईरान इस संगठन का हिस्सा बन चुका है तो क्षेत्रीय तनाव में कमी आएगी। ऐसा लगता है कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक तथा सभ्यता की समानताओं के कारण ईरान की क्षमताओं का उपयोग किए जाने की स्थिति में क्षेत्रीय तनाव में बहुत अधिक कमी लाई जा सकती है। तेहरान विश्वविद्यालय के एकेडमिक बोर्ड के सदस्य और चाइना स्टडीज ग्रुप के प्रमुख हामिद वफाई का कहना है कि शंघाई सहयोग संगठन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। अब जब ईरान भी इस संगठन का हिस्सा बन चुका है, जो एक क्षेत्रीय ताकत है, तो ये संगठन अधिक प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभा सकता है। कोरोना वायरस की महामारी ने सारी दुनिया में नए प्रकार के हालात पैदा कर दिए। इन हालात में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के पास चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग का भी अच्छा अवसर उपलब्ध हो गया है। वैक्सीन के निर्यात से लेकर अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ ईरान के द्विपक्षीय सहयोग के भी नए रास्ते खुलेंगे और ईरान अधिक अनुकूल हालात में अपनी गतिविधियां कर सकेगा और चीन के साथ 25 वर्षीय समझौते को भी अधिक बेहतर ढंग से व्यवहारिक बना सकेगा। चीन के शंघाई विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट के सदस्य फन खोद का कहना है कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ ईरान के संबंध बढ़ेंगे। चीन तो ईरान के लिए सहयोग विस्तार के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की सक्रिय भूमिका के नतीजे में क्षेत्रीय मंडियों में ईरान की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। अब शंघाई सहयोग संगठन 20 साल का हो चुका है। इस समय ईरान को संगठन की स्थायी सदस्यता देने का उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, रूस और किर्गिज़िस्तान तथा भारत का फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थायी सदस्य के रूप में इस संगठन में ईरान के शामिल हो जाने के बाद संगठन के सामने नए क्षितिज खुलेंगे। कुछ पश्चिमी देशों की ओर से ये कोशिश की गई कि ईरान शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बनने ना पाए। इसका उद्देश्य ईरान की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को सीमित करना था और दूसरी ओर शंघाई सहयोग संगठन के प्रभाव के दायरे को बढ़ने से रोकना था। ये कोशिशें नाकाम रहीं और अब सदस्य देशों को एक अच्छा अवसर मिल गया है। پاکستان کے راجنیتک شاست کے پروفیسر سید مصور حسین بخاری کا یہ ماننا ہے کہ اس سنگٹھن میں دنیا کی 42% آبادی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنگٹھن کوریڈور کی بھومکا نبھا رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑے مہتوپورن راجنیتک اور آرتھک پریورتن ہو رہے ہیں، جن کا پربھاؤ شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے علاقے کی سرکشا اور آرتھک شیتروں پر پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایران اور انیہ سدسیہ دیشوں کو سرکشا، آرتھک، سنسکرتی، وگیان اور تکنیک کے شیتر میں نئے افسر ملیں گے۔ کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شنگھائی سہیوگ سنگٹھن میں ایران کی استھائی سدسیتا اس سنگٹھن کے لیے بہت بڑی پونجی ہے، کیونکہ ایران کے ٹھوس اصول شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کی رڑنیتی سے میل کھاتے ہیں بلکہ اس کے پورک ہیں۔ سدسیہ دیشوں نے اس سنگٹھن میں ایران کو سدسیتا دے کر سنگٹھن کی شمتاؤں میں ویاپک وستار کیا ہے۔ سنگٹھن میں ایران کی سدسیتا سبھی کے لیے فائدے کا سودا ہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ کارکرم سماپت ہوتا ہے، آپ سے انمتی چاہتے ہیں۔
دوستو، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا اور پرستوت ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ورشٹھ نیتا نے شری پیمان جی بلی کو آئی آر آئی بی کا پرمکھ نیوکت کیا ہے۔ اربعین ملین مارچ میں 1,60,00,000 سے ادھک شردھالو شامل ہوئے۔ امریکی کمانڈروں نے افغانستان میں اپنی غلطیوں کی بات سویکار کی اور برٹن میں ایندھن سنکٹ گہراتا ہی جا رہا ہے۔ دوستوں، میں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو سدا کی بھانتی پسند آیا ہوگا۔ کاریہکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں ایون پرتکریاؤں سے ہمیں اوشیہ اوگت کرائیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اختر عباس اور ساتھیوں کو انومتی دیں۔ خدا حافظ۔ Thank you.